देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। ये आर्य समाज के जो 10 नियमों की सीरीज में हम तीसरे नियम की चर्चा कर रहे थे, कल पिछले संडे को। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। पिछले रविवार को हमने काफी डिस्कस किया वेद कैसे संसार का सबसे पहला ग्रंथ है, इवन हिस्टोरिकल भी, एविडेंट वाइज भी, किस तरह के ज्ञान उसमें है। दूसरी चीज हमने ये जानने की कोशिश की वेद क्यों पढ़ना चाहिए। जब हम वेद कहते हैं तो जरूरी नहीं केवल चार वेद, वेद उपनिषद, जो वेद से रिलेटेड बाकी शास्त्र भी क्यों पढ़ना चाहिए। पिछले रविवार को हमने काफी सारी चीजें जानी क्यों वेद पढ़ना जरूरी है। उसी की कंटिन्यूटी में दो चार और चीजें हम देखेंगे। वेद इसीलिए भी मुझे पढ़ना जरूरी चाहिए क्योंकि वेद हमें ये गाइड करता है कि लाइफ को नेचर के साथ मिला के चलो। पिछले बार काफी सारे पॉइंट्स हमने रखा था, आज उसकी कंटिन्यूटी में। प्रकृति उतने ही तुम्हारे जीवन का हिस्सा है जितना और कोई हो सकता है। जो आज का जो नया इकोसिस्टम का कंसेप्ट है, और वो इकोसिस्टम तब आया जब हमारे यहां काफी ग्लोबल वार्मिंग से लेकर क्लाइमेट चेंज तक की प्रॉब्लम आए, तब हमने ये कंसेप्ट समझने की कोशिश की कि मैं सिर्फ अपने बलबूते नहीं जी सकता, ह्यूमन बीइंग सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइंस के बलबूते नहीं जी सकता, उसको नेचर के साथ चलनी पड़ेगी, नेचर को भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। नेचर का अर्थ है वो सब कुछ जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर ये गैलेक्सी तक। और ये हमारे प्राचीन काल के वेदों का विचार तब से था। इवन हम डे टू जब से पैदा होते हैं इस धरती में हमारा एग्जिस्टेंस आता है, बाई प्रोडक्ट हम धरती को गंदा करते हैं। इवन वो जो नेचुरल गंदा हमारे द्वारा होता है उसको भी रेक्टिफाई करने के लिए ऋषि मुनियों ने हमें उपदेश दिया था वेदों के द्वारा कि प्रतिदिन अग्निहोत्र करो, यज्ञ करो, क्योंकि जो भी हमारे से बाय नेचर हमारे से गंदगी होती है, हमारे एग्जिस्टेंस मात्र से भी जो गंदा होता है उसको भी रेक्टिफाई करने की जरूरत है, और वह अग्निहोत्र पंच महायज्ञ के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा भी जब आप गृह प्रवेश संस्कार वगैरह करते हैं, आप जो मंत्र वहां पढ़े जाते हैं, अगर आप उस मंत्रों को समझे, जब आप नया घर बनाते हैं रहने के लिए और गृह प्रवेश करते हैं तो उन मंत्रों में सारा विचार जो होता है यही आता है। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मुझे, क्योंकि घर का मतलब प्रॉस्पेरिटी होता है, मुझे प्रॉस्परस बनाओ, कैसे कि मुझे, मेरे परिवार को, मेरे पशु पक्षियों को, एनिमल्स को, और मेरे चारों तरफ जो हरियाली है उनको भी प्रोटेक्ट करो। दर्जनों मंत्रों में गृह प्रवेश के सवेद के मंत्र होते हैं, यही बात रिपीटेडली आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेचर के साथ मिलके चलने का, और जब भी हम आर्टिफिशियल लाइफ जीने लगते हैं इवन इंडिविजुअल लेवल पर भी, तब कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। शुरू शुरू में कितना हम खुशी मनाते थे जब आर्टिफिशियल प्लेजर को हम एंजॉय करने लगते थे, जब कंफर्टेबल लाइफ होने लगा, वो प्लास्टिक से लेकर के हजारों चीजें ऐसे सिंथेटिक फूड से लेकर जीएमओ फूड तक लेकर, अब पता लगता है कि जब जैसे जैसे आप नेचर से दूर जाते हैं कितने हजारों बीमारियां लेकर वो आता है। इसीलिए वेद पढ़ना जरूरी है क्योंकि अकेला कोई शास्त्र धर्मशास्त्र है जो हमें ये सिखाता रहा है कि नेचर के साथ मिलकर के चलो। वेद इसीलिए हमारे लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वेद ही ऐसा धर्मशास्त्र है जो हमें सिखाता है। हो सकता है दूसरा विचारों में तुमसे अलग हो, उसका सोच अलग हो, वो एक दूसरे तरह की माइंडसेट के साथ रहता हो, स्टिल वी हैव टू रेस्पेक्ट हिम और हर। दूसरे के विचार हमसे कितना भी अलग हो, धार्मिक पूजा पद्धति कितना भी अलग हो, हमें उसके रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये इसीलिए आज के जमाने में ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि हम देखते हैं जिस तरह के रिलीजियस कल्ट्स दुनिया भर में फोर्स करते हैं लोगों को जबरदस्ती अपने अपने सोच के साथ मिलाने के लिए, या तो आप हमारे विचार को मानो नहीं तो आप नरक जाओगे, या दूसरा ऑप्शन है या तो आप हमारे विचारों को मानो नहीं तो आपको मरने से हमें स्वर्ग मिलेगा। इसीलिए वेद आपको हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि दोनों बीमारियों से छुटकारा पाने का ज्ञान आपको वेद देता है। कोई कैसा भी विचार रखता हो, कितना भी गंदा विचार रखता हो, आपको उससे अपने से हटाने की जरूरत नहीं है, आपको उसको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। ऋग्वेद का मंत्र कहता है एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सच एक ही होता है पर पढ़े लिखे लोग उसको अलग अलग तरह से समझते हैं, बोलते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। मे बी सम ऑफ देम आर रॉन्ग, सम ऑफ देम आर राइट, मे बी ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग और राइट, बट स्टिल यू हैव टू रेस्पेक्ट देम एन इंडिविजुअल। तुम्हें अपनी बात को सही साबित करने के लिए उनको इस धरती में इराडिकेट, उनको नष्ट करने की जरूरत नहीं है। उनको भी इस धरती में रहने का उतना ही हक है जितना तुम्हें रहने का हक है, कितना भी राइट तुम हो, कितना भी रंग वो हो। इसीलिए वेद आपके लिए ज्यादा पावरफुल होता है बाकी धर्मशास्त्रों की दुनिया में चलने वाले धर्मशास्त्रों के कंपैरिजन। वेद इसीलिए पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि वेद आपसे कभी भी ब्लाइंड बिलीव की डिमांड नहीं करता है कि मुझे मानो या मेरे बताए गए रास्ते को ही सिर्फ मानो, या जो ऋषि मुनियों ने इसको बताया सिर्फ इसको मानो, बाकी जिसको भी मानोगे नरक जाओगे, ऐसा कंसेप्ट आपको कभी भी वेद या वेद शास्त्रों में नहीं मिलने वाला है। किसी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर बुक को, किसी पर्टिकुलर सोच को इसीलिए मानना क्योंकि लाखों करोड़ों लोग मानते हैं इसीलिए वो अच्छा है, ये वेद का कंसेप्ट नहीं है। हो सकता है कि एक ही व्यक्ति उस विचार को मानता हो, अगर वो सच है, वो सही है, वो सही है। मेजोरिटी क्योंकि एक चीज को मानता है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो सही होता है। लोग कभी कभी पूछते हैं अगर ये चीज इतनी अच्छी है तो पॉपुलर क्यों नहीं है? पॉपुलर तो नींबू पानी भी नहीं है जो शहद सेहत के लिए अच्छा है, पर कोका और पेप्सी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पर क्या इसका अर्थ ये थोड़ी है कि वो हेल्दी है और नींबू पानी अनहेल्दी है? पॉपुलरिटी तो अलग अलग कारणों से आता है। हम सब डेमोक्रेसी के एज में रहते हैं। डेमोक्रेसी दोनों दो धार वाला चीज होता है, उसमें अच्छा भी है बुरा भी है। मेजोरिटी जिस लीडर को चुन ले जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही हो, और आजकल बहुत लोग कहते हैं डेमोक्रेसी से चुने हुए लोग कैसे कैसे हो जाते हैं कभी कभी। आप भी बहुत लोग हैं जो यहां मानते नहीं है कि आपका लीडर सही है, पर वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, मतलब ज्यादातर लोग उनको चुना है। तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि उस चीज वही सच है या अच्छा है जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो हमारे पास इतने कम लोग क्यों है? ये लॉजिक वैसे ही है जैसे नींबू पानी कोई पीता नहीं है तो नींबू पानी खराब है, कोका कोला पेप्सी कोला हर कोई पीता है तो ये अच्छा है, वैसे ही लॉजिक की बात होती है। वेद का विचार है कि सच सच है, अच्छा अच्छा है, कौन मानता है नहीं मानता उसके आधार पर ब्लाइंडली डोंट बिलीव इट। जो सनातन हिंदू धर्म, जो आजकल हिंदू धर्म कहते हैं, प्राचीन काल में उसको सनातन धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं, उसका मूल जो कोर सिस्टम था वो बिलीव पर नहीं था। जैसे कि मोस्ट ऑफ रिलीजन में बिलीव करना जरूरी है, पर्टिकुलर व्यक्ति को, पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर बुक को, पर्टिकुलर कंसेप्ट को। जो सनातन हिंदू धर्म था उसकी कोर में था कि आप सत्य को जानने की इच्छा रखते हैं और उसको पाने की कोशिश करते हैं। सारे शास्त्र आपको यही बताते हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी का जो गोल है वो है कि नोइंग सेल्फ, खुद को जानना। पहले जानने की इच्छा करो मैं कौन हूं, और जब एफर्ट्स करते हो वो स्पिरिचुअलिटी है, जब अचीव कर लेते हो तो आप एनलाइटेंड पर्सन होते हो। ये सारा प्रोसेस ट्रूथ, नोइंग द ट्रूथ, सीकिंग द ट्रूथ एंड नोइंग द ट्रूथ, इसके अलावा यहां बिलीव का कोई चांस ही नहीं था। आज हर बात बात पर हम कह बैठते हैं ये मेरा फेथ है, ये मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। आस्था और श्रद्धा हमें पशुओं से करीब ले जाता है। पशुओं की भी अपनी एक पर्टिकुलर आस्था पहले से फिक्स्ड है। वो स्वाभाविक के जानवरों के साथ, क्योंकि ईश्वर ने उनको अपने इंस्टिंक्ट के अलावा और कोई विजडम नहीं दिया है, पर हमारे पास है और वेद कहता है उनको प्रयोग करना जरूरी है। इसीलिए हमारे यहां बहुत सारे प्रमाण, प्रमाण मतलब द टूल्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान को जानने के अलग अलग टूल्स वेद और वेदों के शास्त्रों ने बताया। प्रत्यक्ष, सेंसेस के द्वारा जानो, अगर उसमें कोई चीज फिट ना बैठे, अनुमान, इन्फरेंस, लॉजिक बेस्ड में जानो, उसमें नहीं हुआ तो वह टेस्टिमोनी, ऐसे ऑथेंटिक ऑथोरिटी बुक्स या राइटिंग और ज्ञानी लोग जिन्होंने कहा है उनको पढ़ के सुन के मानो। ऐसे उन्होंने 7-8 तरह के अलग अलग टूल्स दिए। इसमें बिलीव का कोई चांस नहीं था। जहां भी बिलीव आएगा साथ में ब्लाइंड अपने आप आने लग जाएगा। ये वेद इसीलिए पढ़ना जरूरी है, जो आपको माइंड ओपन करने के लिए चैलेंज भी करता है। इवन वो यहां तक भी चैलेंज करता है कि आप मुझे भी मत मानो, मतलब वेद को भी मत मानो। और अगर आप इंडियन हिस्ट्री देखें, पिछले हजार हजार सालों का, मिलेनियम से मिलेनियम की हिस्ट्री देखें, तो आप देखेंगे भारत में जो जो नास्तिकता है, कि नया कंसेप्ट आपको लगता है वेस्टर्न कंसेप्ट है, एथिस्ट कंसेप्ट, ये भारत में उतने ही पुराना है जितना वेद पुराना है, शास्त्र पुराने हैं। हमेशा से ये नास्तिक रहे, एथिस्ट रहे। श्वेताश्वेतर उपनिषद में आता है और अलग अलग उपनिषद में रेफरेंस। कुछ लोग मानते हैं कि वो है, कुछ लोग मानते हैं कि वो नहीं है, कुछ लोग मानते हैं कि ये यूनिवर्स को रैंडमली हुआ, कुछ लोग मानते हैं कि ये मैटर से हुआ, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर से हुआ। मतलब मानने अलग अलग तरह के लोग अलग अलग चीज मानते रहे हैं, और उन सबके साथ हमने डिबेट जरूर किया है, हमने आर्गुमेंट जरूर किया है, पर किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया, किसी को इस धरती से खत्म करने की कोशिश नहीं की। उनके साथ हमारे डिसएग्रीमेंट होने के बावजूद हमने उनको उतने ही स्थान दिया। हम जैसे ही बोलते हैं आचार्य शंकर है, आचार्य रामानुज है, आचार्य दयानंद है, उसी तरह हम चार्वाक को भी आचार्य बोलते हैं। जानते हैं चार्वाक कौन है? नास्तिक फिलोसफी का फाउंडर है। नास्तिक फिलोसफी मतलब फिलोसफी एथिज्म, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो वेद को नहीं मानता, जो किसी भी शास्त्र को नहीं मानता, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, वेद के किसी भी कंसेप्ट को नहीं मानता। पर ऐसा नहीं कि हमारे आपके तरह नहीं मानता, बस रैंडमली जो दिमाग में आया हुमिशियली नहीं मानता। वो उसके लिए लॉजिक देता है, आर्गुमेंट्स देता है। चार्वाक उसका, उनका नाम है। पूरे की पूरी फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, नास्तिक है, वेद को निंदा करने वाला है, पर हमारे ट्रेडिशन में उसको भी हम रेस्पेक्टफुली लेते हैं, आचार्य चार्वाक कहते हैं। जब भी डिबेट करते हैं उथ रेस्पेक्टफुली डिबेट करते हैं उनके मानने वालों के साथ। ये कंसेप्ट हमारे अंदर आया कहां से? उस वेद का ट्रेडिशन है। कोई कितना भी गलत बोलता हो हमारे नजर में उसको रेस्पेक्ट करना जरूरी है। आर्गुमेंट बहुत जरूरी है, लॉजिक बहुत जरूरी है, कॉमन सेंस बहुत जरूरी है। ये अगर जरूरी है, ये हमें वेद
वेद सिखाता है, इसीलिए वेद पढ़ना जरूरी है। देवियों सज्जनों, वेद इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है बिकॉज वेदाज हैव नो कंसेप्ट ऑफ डिसबिलीवर्स। डिसबिलीवर्स मतलब जो वेद को ना माने या ईश्वर को ना माने, जिसको आप कहते हैं ब्लास्फेमी कहते हैं। अगर आप पुराने यूरोप की हिस्ट्री देखें, मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री देखें और आज भी दुनिया में बहुत सारे देशों की हिस्ट्री देखें, लाखों करोड़ों लोग पुराने यूरोप में मारे गए, कितने सारे साइंटिस्ट या फिलोसोफर्स को जेल में डाले गए सिर्फ इसी आधार पर कि वो ईश्वर को सो कॉल्ड एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ईश्वर जो उस समय में प्रिविलेंट रिलीजन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था उसको वो नहीं मानते थे। आज भी दुनिया के बहुत सारे देशों में और सोसाइटी में ये ब्लास्फेमी एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कुछ धर्मशास्त्रों में उसकी रेफरेंस है। जो नहीं मानता वो नरक जाएगा, उसका जिंदा रहना अच्छा नहीं है, उसको मारने वाले भी स्वर्ग जाएंगे, जो डेथ पेनल्टी है या ईश्वर का गुस्सा उस पर होगा या ईश्वर उसको नरक भेजेगा, उसको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, वो बाय नेचर वो सीनर होगा। ये कंसेप्ट आपको कभी भी वेद या वेदों के शास्त्रों में नहीं मिलने वाला है कि आप पर्टिकुलर वे में अगर बिलीव नहीं करते हैं तो आप पापी हैं या आप मरने के लायक हैं या आप नरक जाने के लायक हैं। इसीलिए वेद एनकरेज उल्टा करता है अपोस्टेसी को। अपोस्टेसी क्या है कि जब आप रिजेक्ट कर देते हैं कोई प्रिविलिंग कंसेप्ट को, फेथ को। यू हैव ऑल द राइट टू रिजेक्ट। अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन विजडम पढ़ें, प्राचीन शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्रों की जो प्रोसेस को पढ़ें, कैसे गुरु शिष्य परंपरा में एक एक शास्त्र लिखे गए, शिष्य खुद अपने गुरु के विचारों को खंडन करता है, अपने पुराने पीढ़ी के विचारों को खंडन करता है, नए नए सोच लाता है और वो पीढ़ी चलती रहती है। क्योंकि तुमने मेरे विचार खंडन कर दिया इसीलिए तुम नास्तिक हो, पापी हो, ये कंसेप्ट कभी रहा नहीं। हमारे यहां एक 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी में से एक फिलोसफी है मीमांसा दर्शन। उसमें बड़ा एक सुंदर इंसिडेंट आता है और इंसिडेंट है कुमारिल भट्ट और प्रभाकर गुरु। कुमारिल भट्ट बहुत बड़े मीमांसा दर्शन के फिलोसफर थे और गुरु थे, तो उनका शिष्य बना प्रभाकर। पढ़ने के बाद क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ब्रिलियंट था, तो उसके मोस्ट ऑफ जो सोच है, समझ है, वो अपने गुरु कुमारिल भट्ट से अलग था। और आजकल के इंडियन हिंदू टाइप के पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, काफी डिबेटफुल गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुलों में गुरु और शिष्य के डिबेट में मोस्ट ऑफ टाइम प्रभाकर गुरुजी के थ्योरीज को काट डालते थे, मतलब खंडन करते थे आर्गुमेंट के हिसाब से। कुमारिल भट्ट ने जो किताब लिखा था, जो बुक लिखा था, उनके जीते जी उनके जिंदगी के होते हुए ही प्रभाकर गुरु ने उसी बुक को के कंसेप्ट को थ्योरीजी के काट के अपने बुक लिखा। देवियों सज्जनों, आज का जमाना होता हिंदू धर्म के मानने वाले बाबा लोग तो उसको कब से नरक में भेज दिए होते। पर वो कुमारिल भट्ट अपने शिष्य के साथ कभी एग्री नहीं करते थे, ना लास्ट तक प्रभाकर अपने गुरु के विचारों से कभी एग्री रखते थे, पर कुमारिल भट्ट अपने शिष्य को गुरु कह के बुलाने लगे और धीरे धीरे अपने शिष्य को वो प्रभाकर गुरु नाम से जानने लगे। बाद में उनका नाम प्रभाकर गुरु पड़ गया। जहां वो वेद पढ़ना इसीलिए जरूरी है, जहां गुरु अपने शिष्य के को भी गुरु कहने की क्षमता रखता हो। ये जो कंसेप्ट है कि किसी चीज को आप केवल बिलीव मत करो, उसको समझो, जानो, और आपके अगर अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आप इसमें अपनी बात रख सकते हो, ये सिर्फ हमें वेद ही सिखाता है, धर्मशास्त्रों में, वैदिक ट्रेडिशन में सीखने को मिलता है। देवियों सज्जनों, आप अगर पर्टिकुलर रिलीजियन को फॉलो करते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें बिलीव करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई क्रिश्चियन है और वो कहे कि मैं जीसस को नहीं मानता हूं आज ए प्रोफेट, आपको लगता है वो क्रिश्चियन रह सकता है? सवाल ही नहीं उठता है। कोई कहे कि मैं जीसस को नहीं मानता हूं और बाइबल को नहीं मानता हूं, वो कभी भी क्रिश्चियन नहीं हो सकता है। कोई इसी तरह मुस्लिम कहे कि मैं प्रोफेसी की सिस्टम को रिफ्यूज करता हूं, वो मुस्लिम बन ही नहीं सकता। पर कितने हिंदू आपको मिलेंगे जो मानते हैं कि वेद है भी, नहीं भी है, वेद को देखा कभी है पर तब भी हिंदू है? कितने बाबाओं के चक्कर काटते हैं तब भी हिंदू है? वो इसीलिए कि वो वेद का जो ज्ञान हेरिडिटरी से हमारे अंदर जीएनए में आता गया, वो अभी भी हमारे अंदर है। कि कोई कैसा भी हो, हमारे पास वो पावर या एबिलिटी ईश्वर ने नहीं दिया कि हम किसी को कहे कि तुम पापी हो, तुम नरक जाओगे। तुम कितना भी अच्छा काम करो, दूसरों की भलाई करो, ईश्वर की भक्ति करो, सब कुछ करो, पर अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ये चीजें आप नहीं मानते हो, आप उस रिलीजन को फॉलो करने वाले नहीं हो सकते हो। और उल्टा ये भी हो सकता है, बहुत सारे रिलीजन में तो अगर आप उस रिलीजन में हो और उन चीजों को नहीं मानते हो और एक पर्टिकुलर देश या सोसाइटी में रहते हो, बहुत चांस है कि आपके सर भी उड़ सकता है। पर वेद आपको इसीलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि नो थ्रेट्स, नो पनिशमेंट्स, नो मैंडेटरी बिलीफ्स चेकलिस्ट, ओनली यूनिवर्सलिज्म एंड फ्रीडम टू हैव ए कस्टमाइज्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। ओनली थिंग इज आप ट्रूथ की चाहत रखो, सत्य को जानने की इच्छा रखो। जरूरी नहीं जो आप जानते हो वो सच हो, जरूरी नहीं मैं जो बोलता हूं सच हो, पर सच जानने की इच्छा रखो, उसको जानने की कोशिश करते रहो, तो तुम कैसा भी हो, तुम्हारे लिए ईश्वर तुम्हारे साथ है। तुम ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम्हारे कर्म अच्छे है कि नहीं है। तुम कितने भी पूजा पाठ भक्ति बिलीव कुछ भी करो, अगर तुम्हारे कर्म सही नहीं है तुम्हारा फल खराब होगा, ये वेद का विचार है। देवियों सज्जनों, वेद इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वेद आपको सिखाता है कन्वर्ट करना यूजलेस एफर्ट से। ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है, ये पैसा कमाने का कोई सोर्स हो सकता है, अपने एम्पायर खड़ा करने का सोर्स हो सकता है, स्पिरिचुअली इसका कोई यूज नहीं है दूसरों को कन्वर्ट करने का। जब तक दूसरे के अंदर वो इच्छा ना हो सत्य क्या है मैं जानूं, खुद को रियलाइज करूं, आप पैसे के बल पर, लालच के बल पर, तलवार के बल पर या आर्गुमेंट के बल पर किसी को कन्वर्ट करते हो, ये कंसेप्ट वेद में है ही नहीं। और ये जो कन्वर्जन का जो कंसेप्ट है वो इतना डेंजरियस कंसेप्ट है, सारे दुनिया में अगर आप फॉरगेट अबाउट 5,000-10,000 ईयर्स हिस्ट्री, सिर्फ 1,500-1,700 साल की हिस्ट्री आप देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग मरे हैं पुराने यूरोप से लेकर के अफ्रीका से लेकर एशिया तक सिर्फ इस कन्वर्ट के चक्कर के कारण। कुछ रिलीजन मिशनरीज लगे हुए हैं कि सारी दुनिया को अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर दें। एक दूसरा रिलीजन है जहां के फॉलोअर्स की ये ट्रेनिंग है, उनके शास्त्र उनको उपदेश करता है, जब तक कोई आपके रिलीजन को ना मानने वाला व्यक्ति जिंदा है तब तक तुम्हारा भला नहीं हो सकता। जब तक तुम अपनी जिंदगी में नॉन बिलीवर्स को खत्म नहीं कर देते हो एक आधा, तुम्हें वो स्वर्ग में जगह नहीं मिलने वाला है। और इसके कारण जो होड़ मची हुई है, पहले ज्यादा था अब कम है, फिर समय आएगा फिर भी बढ़ेगा। होड़ किस बात की है? नॉन बिलीवर्स को मिनिमाइज किया जा सके। जो मेरे रिलीजन को नहीं मानता वो इस धरती में कम से कम नंबर में रहे, कोशिश हो कि जीरो नंबर हो जाए। ये दोनों ही, या तो नॉन बिलीवर को नरक में भेजना चाहते हैं या उनकी फिजिकल अपीयरेंस को मिनिमाइज करना चाहते हैं। और वेद कहता है, वेद की जो एजेंडा है कन्वर्जन का, वह है मनुर्भव। वेद का एक मंत्र आता है, बड़ा पॉपुलर मंत्र, क्या कहता है? मनु बनो। मनु जानते हैं, मनु मतलब मनुष्य, मानव, ह्यूमन बीइंग। बी ह्यूमंस, यू डोंट नीड टू बी क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, वो तुम्हारे चरित्र को बदल डालो, कैरेक्टर को अच्छा बनाओ, इंसान बनो। इसीलिए आज तक भी हिंदुओं में कन्वर्ट करने की परंपरा नहीं रही, और हम इतनी ज्यादा रिजिडिटी हो गए कि अभी भी कोई, इवन हमारा अपना भाई गलती से भी दूसरे रिलीजन में चला जाए, उसको लेने के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं था हमारे पास। सो देर इज नो कंपल्सरी स्पेसिफिक वर्स टू एग्री टू। कोई जरूरी नहीं कि आप वेद के किसी वाक्य को जरूर माने, पूरे वेद को माने, शास्त्रों के माने, नहीं, वो आपकी इच्छा है। आपको रास्ता बता दिया गया, इस रास्ते से आप जाएं 3 घंटे में आप ऑस्टिन पहुंचेंगे, इस रास्ते में जाएं 6 घंटे में पहुंचेंगे, इस रास्ते में जाएं 12 घंटे में पहुंचेंगे, इस रास्ते में जाएं कभी भी नहीं पहुंचेंगे। रास्ता बता दिया गया, आप पर डिपेंड करता है आप ऑस्टिन पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, कौन सा रास्ता आप फॉलो करते हैं, आप ऑस्टिन पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। वेद की रास्ता इसी तरह का है, रास्ता बताने का है, फॉलो करना हमारा काम है। हम जिस तरह के फॉलो करते हैं, जितना फॉलो करते हैं उतने जल्दी हम अपने गोल पर पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे अगर फॉलो नहीं करते, रॉन्ग वे पर जाते हैं। पर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा या उसके लिए आपको कन्वर्ट होना पड़ेगा। वेद और एक पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वेद हमें सिखाता है अपनी मदरलैंड के प्रति लॉयलिटी रखने का। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, अभी अगस्त 15 आ रहा है। जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे अपने भारत के प्रति लॉयलिटी रखो, जो भी आपकी अपनी मातृभूमि है, जहां से भी आप अटैच्ड हो, अगर आपको लगता है अमेरिका आपकी भूमि है तो आप उस देश के प्रति अपनी भाव रखो। गद्दारी किसी देश के प्रति रखना वेद के विरुद्ध का सोच है। किसी भी कारण से अपने देश के प्रति गलत भाव नहीं रखना। हमेशा जिस देश में आप रहते हो, जिस देश को आप अपनी भूमि मानते हो, वो कर्म भूमि हो, मातृभूमि हो, जहां से तुम्हारी जीवन जुड़ा हुआ है, उसके प्रति रेस्पेक्ट करो, उन चीजों को रेस्पेक्ट करो, उसके साथ मरने मिटने का भाव रखो, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, उसकी सोवरनिटी के साथ अपने आप को जोड़ के देखो। ये शायद दुनिया में और किसी भी धर्मशास्त्र में, रिलीजियस बुक में ये उपदेश नहीं मिलेगा। सब जगह मिलेगा कि भाई पहले हम पर्टिकुलर रिलीजियन के हैं, बाद में हम आते हैं किसी देश के। वेद सिखाता है जिस देश में तुम हो उसी देश के प्रति मां का भाव रखो। जिस देश में पैदा हुए हो, पले हो, बड़े हो, जहां भी तुम्हारी आस्था है, उस देश के साथ अपने मातृत्व का भाव रखो। जरूरत पड़े तो उसके लिए भी अपने आप को सैक्रिफाइस करो। सो वेदाज डिमांड ऑल ह्यूमंस टू हैव इक्वल सोशियल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल राइट्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बर्थ, कास्ट, रीजन और रिलीजियन। जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसका बाद में जाति या कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, वर्ण व्यवस्था एक नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी था, जहां व्यक्ति अपने एटीट्यूड, नेचर, एजुकेशन, प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग क्लास को बिलोंग करता था।
आज भी हर सोसाइटी में, वो सोसाइटी कितना एडवांस्ड हो या कितने गरीब हो, सब सोसाइटी में नेचुरली चार क्लास आपको मिलेंगे। कुछ इंटेलेक्चुअली बहुत हायर पोजीशन में होते हैं, कुछ बहुत पावरफुल होते हैं, कुछ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ उन तीनों से अलग रहते हैं। ना वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है, ना इंटेलेक्चुअली इतने स्ट्रांग है, ना पावर उनके पास है। वो फोर्थ कैटेगरी के होते हैं जो वर्कर ग्रुप होता है। ये नेचुरल डिविजन्स था जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं और बड़ा इंटरचेंजेबल था। बाद में वो कास्ट सिस्टम, मतलब बाई बर्थ में एक पर्टिकुलर क्लास में होता हूं, वो कन्वर्ट होता गया। तो वेद इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि हमें वेद सिखाता है तुम जेंडर, कास्ट, रिलीजन, बर्थ, किसी भी बेस पर तुम किसी से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। वेद इसीलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि वेदाज कंसीडर ओमेन हाफ सेम राइट एज मेन हाफ। इसीलिए जब आर्य समाज शुरू हुआ, उसकी जो पहले सोशल एक्टिविटीज में से जो पहला सोशल एक्टिविटी थी, लड़कियों के लिए स्कूल खोलना, गर्ल स्कूल खोलना, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ने का मोस्टली ट्रेडिशन था ही नहीं। बहुत रेयरली कोई धनी या बहुत पावरफुल फैमिली की लड़की थोड़ी बहुत अगर पढ़ ले, विदेश जाकर पढ़ ले, अलग बात है। मैन और वोमेन की राइट बराबर हो। और एक इंटरेस्टिंग चीज वेद हमें सिखाता है, मातृवत परदारेषु, अपनी पत्नी को छोड़कर दुनिया में हर वो महिला में मातृत्व का भाव रखो, सम्मान का भाव, मातृत्व का भाव रखो, मां का भाव रखो। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ट्रवत, दूसरों की सामानों को पत्थर की तरह देखो। जैसे रास्ते में कोई मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ हो, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है उसको लेने या छोड़ने में, इसी तरह दूसरों के पास कितनी भी संपत्ति हो, अच्छी हो, बुरी हो, अट्रैक्टिव हो, उसमें उसी तरह डिटैच्ड रहो, उनको पाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल वैसे जैसे मिट्टी के ढेला। दूसरों की, दूसरे महिलाओं को, अपनी पत्नी को छोड़कर वही भाव रखो जैसे आप अपने मां के प्रति रखते हो या बहन के प्रति रखते हो। ये वेद की शिक्षा देता है, संसार में हर वो महिला को सम्मान भाव से देखो, राइट दोनों का बराबर हो, महिलाओं को सम्मान के भाव से देखो। वेद इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वेद कभी भी ये डिवाइन पावर नहीं देता है किसी ह्यूमन बींग को कि स्त्री को पढ़ने का अधिकार नहीं सिर्फ तुम्हें है, स्त्री को ये करने का अधिकार नहीं सिर्फ पुरुष को है। ये वेद आपको कभी शिक्षा नहीं देता है। वेद इसीलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वेद पढ़ने से ही एक अकेला धर्मशास्त्र जो सिखाता है, महिलाओं की विटामिन डी कम करने की जरूरत नहीं, उनको भी बाहर जाने की उतने ही हक है जितना पुरुषों को हक है। कोई पर्दा डालने की, कोई घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, उनको भी खुले आसमान में रहने का उतना हक होना चाहिए। और वेद पूरी तरह अगेंस्ट द पॉलीगेमी, बहुविवाह, हिंदू में भी रहा है, पिछले कानून बनाकर हमने कंट्रोल किया, पर वेद हमेशा से ये उपदेश करता है एक पति का एक पत्नी, एक पत्नी का एक ही पति होना चाहिए जीवन में, इसी बात को करना चाहिए। और कंक्लूड करते हुए चलें, वेद के बारे में हमने बहुत कुछ पिछले संडे को भी, इस संडे को भी जाना, वेद क्यों पढ़ना चाहिए, फॉरगेट अबाउट वेद का क्या सब्जेक्ट है, कंसेप्ट है जो आपने जाना, इवन वेद का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी जो मंत्र है, अगर उसी को कोई ठीक से रिसाइट करे और आप उसको सुने, बिना समझे भी सुने, तो उसकी जो वाइब्रेशन से आपके मन में जो चेंजेस आता है, जो पॉजिटिव चेंजेस आता है, कहीं भी कोई अच्छा वेद पाठ करता हो आपको मिले, वेद मंत्र पाठ होता हो हवन में, संध्या में, या वैसे ही भी कोई,
आपको समझ में आता है नहीं आता है, तब भी आपको अंदर से एक अलग सी अजीब सी यूनिक सी पॉजिटिव वाइब्रेशन आने लगता है। वो उस वेद के एक्सटर्नल पावर है, उनको मंत्रों में, उन वर्ड्स में, उस साउंड में भी वो पावर है जो बिना समझे भी हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो कामनेस, कूलनेस ला जाता है। देवियों सज्जनों, वेद के अलावा कोई भी, मैं कोई भी शास्त्र जब कहता हूं, मैं कोई साइंस टेक्नोलॉजी आर्ट क्राफ्ट की बात नहीं कर रहा हूं, हम कंपेयर कर रहे हैं धर्म शास्त्रों की, सो कॉल्ड होली बुक्स की। वेद के अलावा कोई भी ऐसा होली बुक नहीं मिलेगा धर्मशास्त्र जो टाइमलेस हो, जो रीजनलेस हो। कोई भी वेद मंत्र पढ़ें, आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड में जो ड्रेस है, कल्चर है, खान है, पान है, वही आपको अपनाने की जरूरत है। रिलीजनलेस है, आप किसी भी रिलीजन को ना भी माने तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप मानते हैं तो भी आप वेद को मान सकते हैं, बस आपको पर्पस ओरिएंटेड होने की जरूरत है। और वेद के उद्भाव से पर्पस क्या है, वो कहते हैं हर ह्यूमन बीइंग का चार नेचुरल एस्पिरेशन है। हमारे तरफ से आपके ऊपर थोपा जाने वाला कोई पर्पस नहीं है। कोई पूछे लाइफ का क्या गोल होता है इंसान का, हर आदमी का अलग अलग आंसर है। इवन हमारे भी साधु सन्यासी लोग कहेंगे, बताओ तुम्हारा जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कहोगे जी ये, वो कहेगा नहीं, जीवन का उद्देश्य मोक्ष है। वेद ऐसा नहीं कहता है। वेद का अपने तरफ से कोई आपका गोल फिक्स करके इम्पोज करने का कोई मतलब ही नहीं है। वेद की दृष्टि से हर ह्यूमन बींग के चार नेचुरल एस्पिरेशंस होते हैं, आर्टिफिशियली थोपने की जरूरत नहीं है। उसको हम कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुष कहते हैं ह्यूमन बीइंग। एवरी सोल हैज फोर एस्पिरेशंस व्हिच आर वेरी मच नेचुरल, नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड। इज वो अपने साथ जुड़ा हुआ लेकर हर इंसान आता। क्या है, हर आदमी की इच्छा है धर्म, कुछ अच्छा काम करना, कुछ गुड, अच्छा भला करना, अपने आप को अच्छा बनाना, दूसरों का भला करना, यही धर्म है। बोले सेकेंड क्या है, अर्थ, पैसा कमाना, धनी बनना, बहुत पैसा कमाना। वेद में इसको मना नहीं है क्योंकि नेचुरल एस्पिरेशन है। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये इच्छा है कि मैं धन कमाऊं, ये भी एक्सेप्टेबल है, कमाओ। काम, हर ह्यूमन बींग का यह एस्पिरेशन है कि उसकी जो सेंसेस है वो उसको सेटिस्फाई करे, सेंसुअल प्लेजर है, करो, कोई मना नहीं है। एंड मोक्ष, लिबरेशन, हर ह्यूमन बींग का यह नेचर है, उसको फ्रीडम चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम तो चाहिए, छोटा मोटा फ्रीडम भी चाहिए होता है, कहीं कोई बंधा पड़ा है, किसी के नीचे कोई है, छुटकारा चाहिए। कोई सबोर्डिनेट है, उसे छुटकारा चाहिए। कोई बॉन्डेड है, उसे छुटकारा चाहिए। लाइफ में हर वो जंजाल जो हमें बांधता है, हर इंसान चाहता है मुझे उसे छुटकारा, आजादी, फ्रीडम चाहिए। और जब अंडरस्टैंडिंग साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो फिर लगता है कि मुझे तो इस लाइफ में एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। ये ह्यूमन बींग का नेचर है। वेद कहता है, वेद इसीलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि वेदों से आपको पता चलेगा तुम्हें किसी के द्वारा इंपोज किया गया गोल फिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो भी ह्यूमन बींग के नेचुरल एस्पिरेशन है उसको फुलफिल करो, डेफिनेटली डिसिप्लिन वे में, एक स्मार्ट वे में करो, जिससे कि तुम उसको अचीव कर सको। कोई मना नहीं कि ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, वो करना। इसीलिए हम उसको कहते हैं धर्मार्थ चतुष्टयम। सो इन कंक्लूड, जो तीसरे नियम का जो है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है, और आर्य समाज उसी वेद को, वही वेद जिसकी चर्चा हमने की, आर्य समाज रूल करता है कि वही वेद जो सत्य का भंडार है, जो हमें एक इंसान बनाने के लिए प्रेरित करता है, उसी वेद को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, खुद भी सुनना अगर समझ में आ जाए दूसरों को बताना, खुद भी पढ़ना और दूसरों को भी पढ़वाना, जब समझ में आ जाए दूसरों को भी पढ़ाओ, ये सब अच्छे लोगों का, आर्यमला अच्छे लोगों का कर्तव्य है। एक चीज जो हमारे हिंदू भाई बहनों में छूट गया है, जिसके कारण हम मोस्टली ब्लाइंड बिलीवर्स बन चुके हैं, वो है स्वाध्याय। स्वाध्याय समझते हैं, सेल्फ स्टडी, अपनी शास्त्रों को खुद पढ़ने की आदत डालना। और पंच महायज्ञ में पहला महायज्ञ होता है स्वाध्याय, खुद पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। जब तक हम अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे, सुनेंगे नहीं, और पढ़ लिया सुन लिया तो दूसरों को पढ़ाओ और सुनाओ, जब तक करेंगे नहीं, ना खुद हम एजुकेटेड होंगे, एनलाइटेंड होंगे, ना दूसरों को कर सकते हैं। ये उन सबका कर्तव्य है जो अपने आप को नोबल पर्सन समझते हैं या बनाना चाहते हैं। ये आर्य समाज का तीसरा नियम है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आशा करते हैं कि आप, आपको वेद पढ़ने की रुचि जगी होगी। जरूरी नहीं सीधे जाकर लाइब्रेरी में हमला कर लीजिए वेदों पर, आप छोटे छोटे किताबों से भी शुरू कर सकते हैं। गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़िए, कहीं से भी शुरू करिए। स्टडी करना जरूरी है लाइफ को बदलने के लिए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपको आपके दिमाग भी खुलता जाएगा, फिर आप वेद पढ़ना आपके लिए आसान होगा। इसी बात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति, शांति।